इशिका अभी भी सबके सामने ईशानी की दोस्त बनकर घूम रही थी। सबको लगता था कि इशिका मर गई है। उसके फ्यूनरल से पहले अंतिम दर्शन के लिए जब उसकी डेड बॉडी बाहर रखी गई, तब इशिका ईशानी के पति तरुण के साथ वहां गई थी। तरुण की वहां बातों ही बातों में केशव सिंघानिया से जान पहचान हो गई थी। केशव ने ईशानी की पूरी फैमिली को डिनर के लिए बुलाया था। वहीं पर इशिका को पता चला कि उसके हैंडसम अंकल ही मिस्टर केशव सिंघानिया है। केशव और इशिका के बीच में फिर से एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था। बातों ही बातों में केशव ने राधिका के होश में आने की बात कही। उन्होंने इशिका को राधिका से मिलने के लिए भेजा था। इस वक्त इशिका राधिका के पास जा रही थी। फिलहाल जो भी हालात चल रहे थे उसकी वजह से इशिका को राधिका की बहुत चिंता हो रही थी। इशिका ने टैक्सी ली और वो सिंघानिया हाउस की तरफ बढ़ रही थी। उसने बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, कितना कुछ बदल गया है इस एक हफ्ते में। लाइफ बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। सोचा था अभिमन्यु और मैं साथ में अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। कोई मुझे मारना चाहता है और अब माँ अच्छी हालत में नहीं है। पहले यही लगता था कि मालविका से पीछा छूट जाए और अच्छी जिंदगी बिताने को मिले, यही काफी होगा। लेकिन जिंदगी इतना बदल जाएगी कभी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में इशिका सिंघानिया हाउस पहुंच चुकी थी। उसने अपने मास्क को अच्छे से सेट किया और फिर डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खोलने के लिए श्रुति आई थी। उसने इशिका को गौर से देखा और फिर हल्का हैरानी जताते हुए पूछा, तुम कौन हो? इशिका को किसी पर यकीन नहीं था। उसने अपना टोन चेंज करके धीरे से कहा, मैं इशिका की फ्रेंड हूँ। मेरा नाम ईशानी है। राधिका आंटी से मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। ठीक है, मैं मिस्टर सिंघानिया से पूछ कर आती हूँ। तब तक तुम यहीं पर इंतज़ार करो, श्रुति ने जवाब दिया और अंदर चली गई। इशिका के पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लगभग 5 मिनट बाद श्रुति बाहर आई और उसने इशिका से कहा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा कि राधिका सोने जा चुकी हैं, तुम कल दिन में आ जाना। राधिका के सोने की बात सुनकर इशिका थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उस वक्त रात के सिर्फ 9 बज रहे थे। राधिका इतना जल्दी सोने कभी नहीं जाती थी। इशिका डायरेक्टली इस बारे में उसे कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन मैं गोवा से नहीं हूँ, मुझे वापस भी जाना है। प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए, मैं बस एक बार उन्हें देखकर चली जाऊँगी। इशिका के जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। इशिका के इतनी रिक्वेस्ट करने का भी श्रुति पर कोई असर नहीं हुआ। वो सख्ती से बोली, मैंने कहा ना कल आना, राधिका की तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त वो किसी से नहीं मिलना चाहेगी। श्रुति के बिहेवियर से इशिका को क्लियर हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने हल्की सख्ती से कहा, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रही है? उन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैंने सुना था वो हॉस्पिटल में ही है, फिर उन्हें डिस्चार्ज क्यों किया गया? श्रुति ने इशिका को अजीब नजरों से देखा और फिर बेरुखी से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे ये सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हें कोई हक नहीं है कि यहाँ मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल पूछो। श्रुति इशिका को डांटने लगी। वो कोई जवाब देती उससे पहले पीछे से एक सख्त आवाज आई, उसे कोई हक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा हक है ये जानने का कि मिसेस सिंघानिया की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें घर क्यों लाया गया। वो आवाज सुनकर इशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि अभिमन्यु उसके पीछे खड़ा था। हालांकि इशिका ने खुद को छुपाने के लिए काफी कुछ कर रखा था, फिर भी उसे मन ही मन डर लगने लगा। इशिका ने अपनी घबराहट को काबू किया और मन में कहा, कहीं अभिमन्यु को पता तो नहीं चल गया। मैंने सांची से कहा था कि मुझे आने में टाइम लगेगा। उम्मीद है उसने अभी तक इस बारे में किसी को कहा नहीं होगा। अभिमन्यु ने इशिका से वादा किया था कि वो उसकी एब्सेंस में राधिका का पूरा ख्याल रखेगा। इशिका ने सोचा नहीं था कि अभिमन्यु को राधिका के डिस्चार्ज होने की बात पता भी होगी, लेकिन वो गलत थी। अभिमन्यु को इस बारे में पता लगते ही वो सब कुछ छोड़कर यहाँ राधिका से मिलने आ गया था। अभिमन्यु कुछ कदम आगे बढ़ा तो इशिका साइड में हो गई। उसने इशिका को देखा तक नहीं था। वहीं अभिमन्यु को देखते ही श्रुति ने काफी नरमी से कहा, मिस्टर राजवंश प्लीज अंदर आइए। श्रुति इशिका को अंदर आने से मना कर सकती थी, लेकिन वो अभिमन्यु को नहीं रोक सकती थी। अभिमन्यु का सहारा लेकर इशिका भी अंदर आने लगी तो श्रुति ने उस पर चिल्लाकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था। श्रुति के चिल्लाने पर अभिमन्यु ने पीछे पलटकर इशिका की तरफ देखा तो उसने अपनी गर्दन झुका ली थी। इशिका ने अपने आप को पूरी तरह छुपा रखा था। वहां कोई तमाशा ना हो ये सोचकर अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर श्रुति से कहा, उसे अंदर आने दो, वो मेरे साथ है। अभिमन्यु के कहने पर श्रुति मान गई। वहीं अभिमन्यु ने अभी भी इशिका को ठीक से देखा तक नहीं था। वो अंदर जाने लगा तो इशिका उसके पीछे पीछे आ रही थी। कुछ ही देर में वो तीनों लिविंग रूम में पहुंच गए थे। उनके आते ही आदर्श जल्दी से नीचे आया। आदर्श को देखते ही अभिमन्यु ने सख्ती से कहा, मैंने सुना है मिसेस सिंघानिया को डिस्चार्ज करा लिया गया है, उनकी हालत कैसी है? आदर्श ने सिर हिलाया और कहा, आज दोपहर को उसे होश आ गया था। उसने कहा इशिका मरी नहीं है, वो बहुत अग्रेसिव हो गई थी, उसने हॉस्पिटल में रहने से मना कर दिया था।
मुझे मजबूरी में उसे वापस लाना पड़ा। अभिमन्यु राधिका की हालत समझ सकता था। अगर ऋषिका के जिंदा होने की बात उसे पता नहीं चलती तो शायद आज वो भी राधिका की तरह पागल हो चुका होता। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? आदर्श अभिमन्यु को मिलने के लिए हाँ नहीं कह सकता था। उसने राधिका के साथ आज जबरदस्ती की थी और उसके शरीर पर काफी सारे निशान भी थे। अभिमन्यु अगर राधिका को देखता तो उसके हालात देखकर वो सब समझ जाता। आदर्श ने धीरे से कहा, मैं आपको मना नहीं करना चाहता मिस्टर राजवंश, लेकिन राधिका अभी सोने के लिए गई है। आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत कैसी होगी, अपनी बेटी को खोया है उसने। अभिमन्यु उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु को भी शक होने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ऋषिका ने अपना पेट पकड़कर कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन लगता है मेरा पेट खराब है। क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। अपने घर पर एक अनजान लड़की को देखकर आदर्श हड़बड़ा गया। उसने हल्के गुस्से में कहा, और तुम कौन हो? तुम्हें मेरे घर आने की परमिशन किसने दी? मैं मिसेस राजवंश की फ्रेंड हूँ, ऋषिका ने जवाब दिया। तो अभिमन्यु उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। कोई उसे कुछ पूछता उससे पहले ऋषिका ने फिर से कहा, मुझे कहते हुए काफी अजीब लग रहा है, लेकिन अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मुझे बाथरूम का रास्ता बता दीजिए। ऋषिका तेज सांस ले रही थी। उसने श्रुति की तरफ देखकर कहा, बाथरूम कहाँ है मैडम? श्रुति नीचे के बाथरूम की तरफ इशारा करने वाली थी, तभी ऋषिका जल्दी से बोली, अच्छा ऊपर है बाथरूम, थैंक यू सो मच। ऋषिका ने किसी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तेज कदमों से दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। उसकी इस हरकत पर श्रुति हैरान रह गई। ऋषिका को ऊपर जाते देखा आदर्श पूरी तरह घबरा गया था। वो तेज आवाज में बोला, सुनो लड़की, ऊपर मत जाओ। आदर्श ऋषिका के पीछे जाने को हुआ था, तभी अभिमन्यु उसके आगे आ गया और बोला, रियली सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मेरी फ्रेंड थोड़ी लापरवाह है, वो बस बाथरूम जाने के बाद वापस आ जाएगी। अभिमन्यु को गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो जानता था कि उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए उस अनजान लड़की के सहारे ही सही वो राधिका के बारे में पता लगा सकता था। वहीं अभिमन्यु के सामने होने पर आदर्श भी कुछ नहीं कर सकता था।
आदर्श बस लाचारी से ऊपर की तरफ देख रहा था। ऋषिका बिना सोचे समझे सीधे राधिका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसे कमरे के अंदर जाते देखकर आदर्श ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, उस कमरे में मत जाओ। श्रुति ऋषिका के पीछे जाने लगी। ऋषिका राधिका के कमरे के अंदर पहुंच चुकी थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया था। कमरे के अंदर अंधेरा था। ऋषिका ने जैसे तैसे करके स्विच ढूंढकर लाइट चलाई तो उसने देखा राधिका आराम से सोई हुई थी। उसे देखकर ऋषिका की आंखें नम होने लगीं। ऋषिका राधिका की तरफ बढ़ रही थी, तभी तेज कदमों से चलते हुए श्रुति और आदर्श वहां पहुंच चुके थे। ऋषिका को देखते ही श्रुति ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, हमने तुम्हें ऊपर आने के लिए मना किया था, फिर तुम यहाँ कैसे चली आईं? चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। ऋषिका ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना किया। उसने अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ाए और उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोली, मैं बस गलती से यहाँ पहुँच गई थी। वैसे तो मैं यहाँ मिसेस सिंघानिया से मिलने के लिए ही आई थी, अच्छा हुआ जो उन्हें देख लिया। श्रुति ऋषिका के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे राधिका से दूर करते हुए कहा, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ था, तुमने बहाना बनाया, बाहर निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ऋषिका अपनी जगह पर अड़ी खड़ी थी, वो श्रुति की बात नहीं सुन रही थी। तो आदर्श ने गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये क्या कह रही है? बिना किसी तमाशे के यहाँ से बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद आदर्श पुलिस को कॉल करने को हुआ। तभी अभिमन्यु वहां पहुंचा। उसने आदर्श की तरफ देखकर सख्ती से कहा, वो बस गलती से इस कमरे में आई है, उसके लिए इतना शोर करने की क्या जरूरत है? कुछ और तो नहीं चल रहा है ना मिस्टर सिंघानिया? आदर्श ने तुरंत अपना मोबाइल नीचे किया और कहा, आपके कहने का क्या मतलब है मिस्टर राजवंश? आप अच्छे से जानते हैं राधिका इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है। उसे अभी अभी ऋषिका की अपनी बेटी होने का सच पता चला था और इतनी जल्दी उसने अपनी बेटी को खो दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कम से कम आप राधिका की सिचुएशन को समझेंगे। प्लीज बाहर आ जाइए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ जरा सा भी शोर हो और राधिका के आराम में दखल पड़े। आदर्श अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा था, लेकिन ऋषिका को उसकी बातों से और ज्यादा शक हो रहा था। ऋषिका ने तुरंत कहा, जहाँ तक मुझे पता है मिसेज राजवंश की तबीयत खराब रहती है और उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। मुझे ऋषिका ने बताया था ये रात को ठीक से सो नहीं पाती और थोड़े से शोर से उनकी नींद टूट जाती है। फिर ये उठ क्यों नहीं रही हैं? जवाब दीजिए मिस्टर सिंघानिया, अभिमन्यु ने आदर्श की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। आपकी हरकतें आपको शक के घेरे में डाल रही हैं। पहले मिसेज सिंघानिया को बीमार होने के बावजूद अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया और अब इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें नींद से उठ नहीं रही हैं। अब पुलिस बुलाने की बारी मेरी है। अभिमन्यु इस बात से अनजान था कि उसके पास से खड़ी लड़की ऋषिका ही है, फिर भी वो उसका पूरा साथ दे रहा था। आदर्श पूरी तरह हड़बड़ा गया था, क्योंकि ऋषिका को तो वो भले ही टाल दे, लेकिन अभिमन्यु को टालना नामुमकिन था। अगर उसने पुलिस बुलाने को कहा था तो वो पुलिस बुला भी सकता था। अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर अपना मोबाइल निकाला, वो पुलिस को कॉल करने जा रहा था।